بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتاؤں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج کے کارکرم میں آپ سورہ اسراء کی ساتویں، آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے قاری سعید توسی سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن كبيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے، یدی تم کوئی بھلائی کرو گے تو وہ اپنے لیے ہی کرو گے، اور یدی کوئی برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرو گے، تو جب دوسرا وچن پورا ہونے کو آئے گا तो एक शक्तिशाली गुट आएगा जिसके लोग तुम्हारे चेहरों को बुरा बना देंगे और मस्जिदुल अक्सा में प्रविष्ट हो जाएंगे, जिस प्रकार से कि वे पहली बार प्रविष्ट हुए थे, और वे जिस वस्तु को भी अपने नियंत्रण में लेंगे उसे बड़ी कठोरता से तबाह कर देंगे। शायद तुम्हारा पालनहार तुम पर दया करे, और यदि तुम पलट आए तो हम भी पलट आएंगे, और हमने नरक को काफिरों के लिए एक कड़ा कारावास बनाया है। निश्चित रूप से यह कुरान सबसे सुदृढ़ राह की ओर मार्गदर्शन करता है, और भले कर्म करने वाले ईमान वालों को ये शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
ये रेडियो तहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शार्टवे में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज गुरुवार है, आज़र की 27, जमादिल अव्वल की 2 और दिसंबर की 17 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, और उसके बाद एक विशेष कार्यक्रम, और अंत में हम आपको सुनवाएंगे आज की बात। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम से विश्व समाचार सुनिए। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका ईरानी राष्ट्र के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। चीन का कहना है कि ईरान परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत का कोई मतलब नहीं है। तुर्की ने कहा है कि कठिन समय में हम ईरान के साथ खड़े हैं। आर्थिक विकास के बाद अब अन्य क्षेत्र में भारत बांग्लादेश से पिछड़ गया है। अब आप विस्तार से विश्व समाचार सुनिए। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि मुझे यकीन है कि ईरानी जनता की दृढ़ता अमेरिका की अगली सरकार को ईरान के सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर देगी। राष्ट्रपति रूहानी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता के बारे में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की बुधवार के सुझाव का हवाला देते हुए कहा कि हम सबको मिलकर राष्ट्रीय शक्ति के विस्तार का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय ताकत और एकता की मजबूती की स्थिति में सभी ईरान की महानता को सलाम करेंगे। राष्ट्रपति रूहानी ने पश्चिमी देशों की ओर से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को बेअसर बनाने की सघन कोशिश के बारे में सुप्रीम लीडर के सुझाव का हवाला देते हुए कहा कि हमें प्रतिबंधों को बेअसर बनाने की कोशिश करना चाहिए, और प्रतिबंधों को हटवाने के लिए भी हम कोई भी कोशिश करने में एक घंटे की भी देरी न करें, और सरकार इस मार्ग में कोशिश करे। ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों की आलोचना करते हुए तेहरान ने कहा है कि इस दस्तावेज में कानूनी पहलू का अभाव है। गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीब जादे ने कहा कि कनाडा ने इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, और जो लोग इसके पीछे हैं उनका मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का इतिहास है, विशेष रूप से सैन्य हस्तक्षेप करना और तानाशाही सरकारों को हथियार बेचना। एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके पक्ष में 82 वोट पड़े और विरोध में 30, जबकि 64 सदस्य अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव में ईरान में अधिक मौत की सजाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और जेलों की खराब स्थितियों को दूर करने का आग्रह किया गया। इसी प्रकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने वाली जेलों में बंद महिला मानवाधिकारों की रिहाई की मांग की गई। अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकारों के उल्लंघन को बंद करने की मांग के साथ ही 2021 में निष्पक्ष राष्ट्रपति चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। खतीबजादे का कहना है कि जो देश इस प्रस्ताव के पीछे हैं, उन्होंने अमरीकी गुंडागर्दी के प्रभाव में ईरानी राष्ट्र के खिलाफ अमरीकी आर्थिक आतंकवाद के प्रति आंखें मूंद रखी हैं। ये वही देश हैं जो वाशिंगटन के गैर कानूनी और अमानवीय प्रतिबंधों की निंदा के बजाय उसके पिट्ठू बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने इस बात पर बल देते हुए कि सीरिया में अमेरिका के आतंकवादी सैनिकों की उपस्थिति गैरकानूनी है, इस देश से अमेरिकी सैनिकों के निकलने की मांग की है। मजीद तख्त रवांची ने बुधवार को सीरिया के बारे में सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति गैरकानूनी और विशेष प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। उन्होंने कहा कि सीरिया में जिन देशों के सैनिक दमिश्क सरकार की अनुमति के बिना तैनात हैं, उन सबको इस देश से बाहर निकलना चाहिए। ईरान के परमाणु समझौते पर संयुक्त आयोग की बैठक के बाद चीन के प्रतिनिधि ने कहा है कि बीजिंग JCPOA पर फिर से वार्ता का विरोधी है। चीनी विदेश मंत्रालय में शस्त्र नियंत्रण विभाग के प्रमुख फू कुंग ने इस बात पर बल देते हुए कि चीन JCPOA पर पुनः वार्ता का विरोधी है, कहा कि अमेरिका को ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने चाहिए। उन्होंने परमाणु समझौते के दायरे में ईरान की ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख किया और कहा कि ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी अमेरिका परमाणु समझौते में वापस आएगा और ईरान के खिलाफ लगे प्रतिबंध हटाएगा, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने लगेगा। ईरान के परमाणु समझौते JCPOA पर बुधवार को संयुक्त आयोग की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से हुई। परमाणु समझौते के अनुसार यह आयोग JCPOA के पालन पर नजर रखता है। तुर्की के वाणिज्य मंत्री ने ईरान के उद्योग, खनन और वाणिज्य मंत्री से टेलीफोन वार्ता में कहा है कि कठिन दिनों में हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम दवाओं और खाद्य सामग्री को प्राथमिकता देंगे और ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे जिनमें ईरान तुर्की के बैंकों में मौजूद अपनी रकम से दवाएं और खाद्य सामग्री खरीद सके। तुर्की की वाणिज्य मंत्री रुखसार पेकजान ने इसी तरह इस टेलीफोनी वार्ता में कहा कि तुर्की ईरान के साथ व्यापार और सहयोग में विस्तार का इच्छुक है। जहां भारत में धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों पर हो रहे घातक हमलों के बारे में संबंधित संस्थाएं अपनी रिपोर्टों में गंभीर चिंता जता रही हैं, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि यहां सभी धर्मों के लोगों का मुक्ति युद्ध में बलिदान का साझा इतिहास है और बांग्लादेश में धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं होगा। धर्म निरपेक्षता भारत का हॉलमार्क समझा जाता है। बांग्लादेश के विजय दिवस के मौके पर राजधानी ढाका स्थित अपने सरकारी आवास से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए आगे कहा कि बांग्लादेश बनने में सभी धर्मों के लोगों ने अपने खून का बलिदान दिया है और बराबरी के साथ इस मुल्क में रहेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी करके ये सूचना दी है। बयान के मुताबिक COVID-19 के लक्षण जाहिर होने के बाद मैक्रॉन का कोरोना टेस्ट हुआ जिसमें उन्हें इस वायरस से संक्रमित पाया गया। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति सात दिन के लिए क्वारंटीन हो गए हैं, लेकिन वो अपना काम जारी रखेंगे। हालांकि बयान में मैक्रॉन के स्वास्थ्य के बारे में अधिक ब्यौरा नहीं दिया गया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति अपने 43वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फ्रांस इस महामारी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। देश में इस संकट से निपटने के तरीकों और भारी आर्थिक गिरावट को लेकर मैक्रॉन की कड़ी आलोचना हो रही है। एलिजी पैलेस द्वारा जारी बयान के मुताबिक मैक्रॉन की पत्नी में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। दुनिया की तेल मार्केट के विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब की विख्यात आरामको कंपनी को तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण गंभीर संकट का सामना है, जिसके चलते कंपनी अपनी बहुत सी संपत्तियां बेचने पर मजबूर हो गई है। सऊदी अरब ने वैसे तो इस साल अपना तेल निर्यात काफी बढ़ा दिया और सऊदी अरब को मिलने वाले कुल रेवेन्यू में 50% से अधिक हिस्सा आरामको से होने वाली आमदनी का है, लेकिन सऊदी अरब का बजट घाटा बढ़कर 79.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो इस देश की कुल जीडीपी का 12% है। आरामको दुनिया की बहुत बड़ी तेल कंपनी है और ये कंपनी सरकारी खजाने को अपनी 75 अरब डॉलर की आमदनी का बड़ा भाग देती है, क्योंकि सालाना बजट के लिए रियाद सरकार संकट से जूझ रही है। इसी के साथ रेडियो तहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत को एक ऐतिहासिक घटना बताया और कहा कि शहीद कासिम सुलेमानी इस्लामी जगत के एक नायक में भी परिवर्तित हो गए।
शहीद हम कहरमान मिल्लत ईरान शुद व हम कहरमान उम्मत इस्लामी।
फ्रांस में कोरोना से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 से 15 हजार के बीच है, जबकि मरने वालों की संख्या 300 से 700 के बीच है। गत रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर आना जाना मना हो गया है, यहां तक कि नया साल आरंभ होने की रातों तक यही स्थिति जारी रहेगी। भारतीय किसानों के विरोध प्रदर्शन को आज 22 दिन पूरे हो गए, परंतु सरकार और किसानों के अपने अपने रुख पर अडिग रहने के कारण गतिरोध बना हुआ है और अब मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया है। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के व्यक्तित्व के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए उनकी शहादत को एक ऐतिहासिक घटना बताया और कहा कि शहीद कासिम सुलेमानी इस्लामी जगत के एक नायक में भी परिवर्तित हो गए। साथ ही सर्वोच्च नेता ने अपने भाषण के एक भाग में आर्थिक और सैनिक क्षेत्र में मजबूती पर भी बल दिया। साथ ही रविश जैदी।
अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को जारी वर्ष के जनवरी महीने में आतंकवादी हमले में शहीद कर दिया था। यह अमेरिका की दुश्मनी का ऐसा कृत है जो समीक्षा व विश्लेषण योग है। कल बुधवार को ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के व्यक्तित्व के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए उनकी शहादत को एक ऐतिहासिक घटना बताया और कहा कि शहीद कासिम सुलेमानी इस्लामी जगत के एक नायक में भी परिवर्तित हो गए।
शहीद हम कहरमान मिल्लत ईरान शुद व हम कहरमान उम्मत इस्लामी।
जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने अपने आतंकवादी हमले में शहीद करके आतंकवाद से मुकाबले के अपने झूठे दावे की वास्तविकता की पोल खोल दी। विश्व समुदाय इस समय अमेरिका को मानवता और शांति का शत्रु समझता है। अमेरिका का एकमात्र लक्ष्य क्षेत्र के देशों और उनके ऊर्जा स्रोतों पर वर्चस्व जमाना है। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने कल के अपने भाषण में इस बात पर बल देकर कहा कि शहीद कासिम सुलेमानी ने अपनी जिंदगी में और अपनी शहादत के बाद भी साम्राज्य को मात दी।
शहीद सुलेमानी हम दर ज़मान ज़िंदे बूदनश इस्तिकबार रो शिकस्त दाद हम बो शहादत शिकस्त।
सर्वोच्च नेता ने अमरीकी राष्ट्रपति के संबोधन के उस भाग की याद दिलाई जिसमें ट्रंप ने स्वीकार किया और कहा था कि हमने क्षेत्र में $7 ट्रिलियन खर्च किया परंतु कुछ मिला नहीं। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा कि इस बड़े कार्य के नायक जनरल कासिम सुलेमानी हैं जिसे उनके जीवन में ही अंजाम दिया गया। इसी प्रकार उन्होंने इराक में अमेरिका की सैन्य छावनी ऐनुल असद पर होने वाले मिसाइल हमले को जोरदार थप्पड़ की संज्ञा दी और कहा कि इससे भी जोरदार थप्पड़ खोखले साम्राज्य की वैचारिक पराजय है और इसके लिए क्रांतिकारी प्रतिभाशाली और हमारे मोमिन युवाओं की जरूरत है। इसी प्रकार इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने क्षेत्र में अमरीकी सैनिकों के निष्कासन पर बल दिया और कहा कि इसके लिए भी क्षेत्रीय राष्ट्रों के प्रयास और प्रतिरोध नीति की आवश्यकता है। इसी प्रकार इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने बल देकर कहा कि अलबत्ता ये जोरदार थप्पड़ प्रतिशोध नहीं है क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश देने वालों और उनके हथियारों से बदला लिया जाना चाहिए और जब भी संभव होगा निश्चित रूप से ये प्रतिशोध लिया जाएगा।
इन गैर अज इंतकाम अज कातिल कातिल सुलेमानी व आमिर बे कत्ल सुलेमानी बायद इंतकामशुन पस बदन।
ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने अपने भाषण के एक भाग में आर्थिक और सैनिक क्षेत्रों में मजबूती पर बल दिया और इस वास्तविकता को बयान किया कि ये अमरीकी दुश्मनी ट्रंप से विशेष नहीं है जो ट्रंप के चले जाने से समाप्त हो जाएगी, बल्कि ओबामा ने भी ईरानी राष्ट्र के साथ बुरा किया। इसी प्रकार इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने कहा कि तीन यूरोपीय देशों ने भी अंततः बुरा दोगलापन और मिथ्याचारी व्यवहार किया और उन्होंने बल देकर कहा कि केवल प्रतिरोध, विवेक और साहस व बहादुरी से विश्व की वर्चस्वादी शक्तियों का मुकाबला किया जा सकता है और शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने अपने अमल से इस वास्तविकता को व्यवहारिक बना दिया और प्रतिरोध के उज्जवल मार्ग को अमर व प्रभावी बना दिया।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
फ्रांस में कोरोना से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 से 15 हजार के बीच है जबकि मरने वालों की संख्या 3 से 700 के बीच है।
फ्रांस में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की तादाद 10 से 15 हजार के बीच है जबकि मरने वालों की तादाद 300 से 700 के बीच है। पिछली रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर आना जाना मना हो गया है। यहां तक कि नया साल शुरू होने की रातों तक यही स्थिति जारी रहेगी। समस्त रेस्टोरेंट, कैफे, सिनेमा, संग्रहालय, व्यायाम और घूमने फिरने के स्थल यथावत बंद रहेंगे। खेत के साथ कहना पड़ता कि कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस बात से चिंतित हूँ कि जब परिवार के लोग साथ होंगे और नए साल के अवसर पर एक दूसरे के यहाँ मेहमानी में जाएंगे और ठंड के साथ कोरोना की तीसरी लहर विकराल हो जाएगी। हर साल के अंत में लाखों पर्यटक पेरिस और उसमें मौजूद ऐतिहासिक अवशेषों व धरोहरों को देखते थे, परंतु आजकल ये शहर और उसके पर्यटन स्थल सुनसान जंगल हो गए हैं। अब तक फ्रांस में लगभग 24 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और खेत के साथ कहना पड़ता है कि इनमें से लगभग 60,000 लोगों की मौत हो गई। अब ब्रिटेन में कोरोना के प्रकोप पर एक नजर। ब्रिटेन में भी कोरोना के प्रकोप ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। एक महिला के विचार, एक दिन सीमितता कम करने के बदले में सरकार दो दिन क्वारंटाइन करने पर बाध्य होगी। इस आधार पर नए वर्ष के अवसर पर एक दूसरे से मुलाकात का जो प्रोग्राम होगा वो चिंता का विषय है। ब्रिटेन में राष्ट्रीय सांख्यिकी केंद्र ने इस देश में कोरोना से मरने वालों की तादाद 80,000 बताई है। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट।
भारतीय किसानों के विरोध प्रदर्शन को आज 22 दिन पूरे हो गए, परंतु सरकार और किसानों के अपने अपने रुख पर बने रहने के कारण गतिरोध बना हुआ है। यहां तक कि ये मामला अब उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है।
विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी विरोध प्रदर्शनों को आज 22 दिन हो गए, लेकिन केंद्र सरकार और किसानों के अपने रुख पर अडिग रहने से गतिरोध बना हुआ है और मामला अब उच्चतम न्यायालय तक पहुँच गया है। किसान दिल्ली से मिलने वाली उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के एक 37 वर्षीय किसान की भयंकर ठंड के कारण हरियाणा दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मौत हो गई है। किसानों का दावा है कि नवंबर के अंत से चल रहे इस आंदोलन में अब तक 20 आंदोलनकारी किसानों की मौत हो चुकी है। किसान कह चुके हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे प्रदर्शन स्थलों से नहीं हटेंगे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। उधर किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वो किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार को स्वीकार करती है और वे सभी किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे ने कहा कि हमें देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करें और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी न हो। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों की दुर्दशा और उसके कारण सहानुभूति के साथ हैं, लेकिन आपको इस बदलने के तरीके को बदलना होगा और इसका हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वह आज वैधता पर फैसला नहीं करेगी बल्कि केवल किसानों के प्रदर्शन पर सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वैधता पर बाद में फैसला होगा, पहले हम किसानों के आंदोलन द्वारा बंद की गई सड़क और उससे नागरिकों के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव पर सुनवाई करेंगे। केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता साल्वे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली आने वाले रास्तों को बंद कर रखा है जिससे दूध, फल और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और इससे अपूर्णीय क्षति हो सकती है। साल्वे ने कहा कि आप शहर को बंदी बनाकर अपनी मांग नहीं मनवा सकते। उन्होंने कहा कि विरोध करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन ये दूसरों के मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्शन का एक लक्ष्य होता है जिसे बिना हिंसा के पाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में एक समिति अपनी राय देगी जिसका पालन करना होगा। ज्ञात रहे कि किसानों ने बारंबार कहा है कि उनका विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक जारी रहेगा। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروتاؤ، ہماری سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا آج کی بات، پر اس سے پہلے دھارمک شکشا کیندروں اور وشو ودیالیوں کے ایکتا کے سمبندھ میں پیش ہے ہمارا وشیش کاریکرم۔
دوستو، ایران میں مدرسوں اور یونیورسٹیوں کے بیچ ایکتا و سمنمے کی گھوشنا کی ورش گاٹ پر وشیش پروگرام لے کر مریم مہردادی اور میں روش زیدی حاضر ہوں، ہمارا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، اس کاریکرم میں آیت اللہ ڈاکٹر موفتے کے شہادت دیوس پر مدرسوں اور یونیورسٹیوں میں ایکتا و سمنوائے کی اہمیت پر چرچا کر رہے ہیں۔ 27 آذر برابر 18 دسمبر کو ایران میں مدرسوں و یونیورسٹیوں میں ایکتا و سمنوائے دیوس رکھا گیا ہے۔ 41 سال پہلے آج کے دن 18 دسمبر 1979 کو امام خمینی کے ساتھیوں و اسلامی کرانتی میں پربھاوی یوگدان دینے والے ڈاکٹر محمد مفتح آتنکیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ وہ دھارمک معاملوں میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں اونچے درجے کی شکشا حاصل کر کے مدرسوں اور یونیورسٹیوں میں ایکتا و سمنوائے کا نمونہ بنے۔ یہ دونوں ہی ایران میں وگیان و سنسکرتی کے اہم کیندروں میں ہیں۔ ڈاکٹر موفتے نہ صرف مدرسوں اور یونیورسٹیوں کے بیچ ایکتا و سمنوائے کا نمونہ تھے، بلکہ وچاروں میں بھی وہ ایرانی سماج میں ان دونوں سنستانوں کے پڑے ہوئے لوگوں کے بیچ ایکتا میں وشواس رکھتے تھے اور اسلامی کرانتی کو انہیں دونوں اہم ورگوں کے بیچ سمنوائے کا نتیجہ مانتے تھے۔ ڈاکٹر موفتے سماج کی بھلائی کے لیے اس ایکتا کو مضبوط بنانے پر بل دیتے تھے۔
مدرسوں کا اتہاس اسلامی جگت میں بہت پرانا ہے، خاص طور پر شیعوں میں پہلا مدرسہ عراق کے پوتر نگر نجف میں 5ویں شتابدی ہجری میں قائم ہوا، جسے شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، لیکن یونیورسٹی کو آدھونک سنستھا مانا جاتا ہے۔ پشچم کے ساتھ ایرانی سماج کے چنوتی پور سمبندھوں سے پیدا ہونے والی کچھ ضرورتیں اس سنستھا کے وجود میں آنے کا کارن بنی، جس کا لکش لوگوں کو شکشا و ٹریننگ کی نظر سے ماہر بنانا ہے، تاکہ وہ دیش کے وکاس میں و ترقی کا بوجھ اٹھا کر پشچم کے ساتھ اودیوگک سین و آرتھک کھائی کو کم کر سکیں۔ حالانکہ ایران میں پہلی یونیورسٹی کی جڑیں امیر کبیر کے راشپتی کال میں دارالفنون نامک پولیٹیکنک کی استھاپنا سے ملتی ہیں، لیکن 1934 میں تہران یونیورسٹی کی استھاپنا ایران میں پہلی یونیورسٹی کے روپ میں ہوئی۔ اس وقت 80 سال سے زیادہ کا وقت گزر رہا ہے۔ اس بیچ تہران یونیورسٹی سہت ایران کی دوسری یونیورسٹیوں سے بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ پڑھ کر نکلے، جو دیش کے وکاس کے چکر کو چلا رہے ہیں، لیکن مدرسے شتابدیوں سے یوواؤں کی شکشا و ٹریننگ کی ذمہ داری نبھاتے آ رہے ہیں۔ ایران میں دور دور تک یونیورسٹی کا نشان بھی نہیں تھا، اس وقت سے مدرسے یوواؤں کو شکشا دیتے آ رہے ہیں۔ حالانکہ ان شکشاؤں کا دائرہ دھارمک معاملوں تک سیمت تھا اور آدھونک شکشا اس میں نہیں ملتی تھی۔
ایران میں امپورٹڈ ایجوکیشن سنستھا کے روپ میں یونیورسٹی کی استھاپنا اور ایجوکیشن سسٹم شکشکوں اور چھاتروں پر چھائے غیر دھارمک رجحان سے سماج میں یہ مانسکتا بنی کہ یونیورسٹی اور مدرسے دو ایسی سنستھائیں ہیں جن میں آپس میں نہیں بن سکتی، کیونکہ یونیورسٹی کے وجود کی بنیاد وگیان اور ترک پر ہے، جبکہ مدرسے کی بنیاد آستھا اور اپاسنا پر ٹکی ہے۔ یہ مانسکتا یونیورسٹی کی استھاپنا کے دو دشکوں تک سماج میں موجود رہی، لیکن 20ویں شتابدی کے 5ویں دشک کے بعد یونیورسٹیوں میں دھارمک رجحان والے سداچاری چھاتروں کے داخلہ لینے اور مدرسوں کے بچوں کے وہاں وگیان سے پریچت ہونے سے دھیرے دھیرے ان دونوں سنستھاؤں کے بیچ سمبندھوں پر جمی برف پگھلنے لگی اور دونوں سنستھاؤں کے بیچ سمنوائے بنانے والے نمونے سامنے آئے۔ اس بیچ ایران میں بڑھتے ظلم کے ماحول اور مدرسوں کے چھاتروں کے ساتھ مل کر یونیورسٹی کے چھاتروں کی اور سے دیش کی راجنیتک ویوستھا کی سمیکشا سے یہ سمبندھ اور مضبوط ہوئے۔
دیش کے راجنیتک منچ پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ادے اور یونیورسٹی کے سمبندھ میں ان کا سکاراتمک نظریہ تھا ان کی اور سے مدرسوں کے چھاتروں اور یونیورسٹی کے چھاتروں کے بیچ سہیوگ پر تاکید سے دونوں سنستھاؤں میں پھیلی نکاراتمک مانسکتا ہار گئی۔ دوسری اور ایک ورشٹھ دھرم گرو کی اور سے کرانتیکاری وچاروں نے یونیورسٹیوں کے چھاتروں کے بیچ ان کی پوزیشن کو مضبوط کیا، کیونکہ یہ چھاتر سماج پر چھائے ہوئے اتیاچاری ماحول سے خوش نہیں تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ دیش کو مکتی دلانے، چھائے ہوئے راجنیتک بھرشٹاچار پر قابو پانے اور لوگوں کو سنگھٹت کرنے کے لیے یونیورسٹی اور مدرسے کے بیچ ایکتا و سمن میں ضروری ہے۔ اس لیے اس بندو پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سنگھرش کی شروعات سے ہی بل دیتے تھے۔
آیت اللہ ڈاکٹر مفتح امام خمینی کے مکھ ششوں میں تھے جو ان کے اس وچار کے دھوج واہک بنے۔ ڈاکٹر مفتح کا ماننا تھا کہ یونیورسٹی کے شکشک اسٹوڈنٹ اسلامی شکشا حاصل کر کے اور اپنے بھیتر نیتکتا پیدا کر کے دیش کے بھوشیہ کے لیے اسٹوڈنٹ ورگ کے بیچ ایک پرسدھی پرتبدھی پیڑھی کو ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مدرسوں کے چھاتر بھی یونیورسٹیوں میں آدھونک شکشا حاصل کر کے دھارمک شکشا کا بہتر ڈھنگ سے پرچار پرسار کر سکتے ہیں۔
ڈاکٹر مفتح نے مسجد اور یونیورسٹی کے بیچ سمنمے شیرشک کے تحت لیکھ میں جو سن 1961 میں چھپا تھا مدرسوں اور یونیورسٹیوں کے بیچ ایکتا و سمنمے کو ضروری بتاتے ہوئے لکھا تھا، اگر یونیورسٹی کے شکشکوں اور دھرم گروؤں کے بیچ کسی بات پر مت بھید پیدا ہو اور بدھی جیوی ورگ الگ راستے اور دھارمک ورگ الگ راستے پر چلے جائیں تو ناکامی کا پہلا چرن یہی ہوگا۔ یہ وچار اسلامی کرانتی کی سفلتا کی کنجی تھا۔
امام خمینی اپنے برسوں کے سنگھرش کے دوران اس وچار کو ویوہارک بنانے اور دھارمک سنستھاؤں سے جڑے لوگوں پر بل دیتے تھے کہ یونیورسٹی سے جڑے لوگوں سے اپنا سمپرک مضبوط کریں، ان کے سمبندھ میں نکاراتمک درشٹی کو نہ اپنائیں۔ اسی طرح امام خمینی یونیورسٹی کے لوگوں سے کہتے تھے کہ مدرسوں کے ساتھ سمپرک و ومرش کریں اور ساموہک راستے پر آگے بڑھیں۔ امام خمینی یونیورسٹی اور مدرسے کے بیچ ایکتا کو اسلامی کرانتی کی اہم اپلبدھیوں میں گنواتے ہوئے کہتے تھے، میں یونیورسٹیوں اور مدرسوں کے بیچ سمنوے و سامنجس کو بڑی سفلتا مانتا ہوں۔ امام خمینی کا یہ نظریہ ان دو سنستھاؤں کے پربھاوی رول کو صرف اسلامی کرانتی کی سفلتا میں ہی نہیں بلکہ بھوشیہ میں اسلامی کرانتی کی آکانکشاؤں اور سماج کی ترقی کے جاری رہنے میں بھی دیکھ رہا تھا۔
اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد مدرسوں اور یونیورسٹیوں کے بیچ سمنمے، اس کے سوروپ اور دیش کے بھوشیہ میں اس کا یوگدان، دونوں اور سے ویچارک حلقوں کا اہم وشے تھا۔ ایک ورگ کا یہ ماننا تھا کہ مدرسوں اور یونیورسٹیوں کے بیچ سمنمے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا ولے ہو جائے، ورنہ لمبے سمے کے لیے صحیح ارتھ میں یہ سمنمے حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اس میکینیکل وچار کو سماج میں بہت زیادہ سمرتھن نہیں ملا، لیکن دوسرا نظریہ یہ تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں مدرسوں اور یونیورسٹیوں کے بیچ ایکتا و سمنوے کا ارتھ میکینیکل ایکتا نہیں بلکہ دیش کے وکاس کا راستہ تیار کرنے کے لیے سماجک سمنجس کے لیے سماجک سہیوگ اور گیان کو دشا دینے کا ادیش دونوں کا ایک ہونا چاہیے، کیونکہ میکینیکل ارتھ میں ایکتا سے مشکل حل نہیں ہوگی بلکہ دوسری مشکلیں پیدا ہوں گی۔ اس بنیاد پر ان دونوں سنستھاؤں نے اسلامی گڑتنتر ویوستھا کے دوران آپس میں سہیوگ تو کیا لیکن اپنی پہچان ختم کرنے و میکینیکل ولے سے پرہیز کیا۔
اس بیچ یونیورسٹیوں میں نیک شکشکوں و چھاتروں اور مدرسوں کے اچھی سوچ والے چھاتروں نے ان دونوں سنستھاؤں کے بیچ سمنوے پیدا کرنے میں پربھاوی یوگدان دیا۔ آیت اللہ شہید متحری، آیت اللہ شہید مفتح اور آیت اللہ شہید بہشتی اس آدرش کے مولیوان نمونے تھے جو افسوس کی کرانتی کے شروع کے برسوں میں ہی آتنکیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے وچار و ویوہار میں مدرسوں اور یونیورسٹی کی شکشا کی جھلک نظر آتی تھی۔ ان ہستیوں کی شہادت کے بعد بھی یہ راستہ رکا نہیں بلکہ آگے بڑھتا رہا اور مدرسوں و یونیورسٹیوں کے بیچ ایکتا کا سمرتھن کرنے والے نئے وچارک بھی سامنے آئے۔
पिछले दो दशकों में ईरान में यूनिवर्सिटी और मदरसे के बीच एकता व समन्वय का वास्तविक प्रतीक स्वर्गीय डॉक्टर दाऊद फरही थे। उन्होंने धार्मिक शिक्षा के साथ साथ तेहरान यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में डॉक्टरेट किया। उन्होंने इस विषय पर किसी तरह की बहस को जन्म देने के बजाय खुद ही मदरसे और यूनिवर्सिटी के बीच वास्तविक एकता का प्रतीक बन गए। उन्होंने साबित किया कि यूनिवर्सिटी और मदरसे में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले आज भी उनके रास्ते पर चल रहे हैं और मुफत्ते जैसे शहीद के खून से ऐसे सैकड़ों छात्रों की ट्रेनिंग हुई है जो इन दोनों संस्थाओं के बीच एकता के ध्वजवाहक हैं। अफसोस कि डॉक्टर दाऊद फरही कोरोना वायरस से इस दुनिया से चल बसे और हम उनके वजूद की बरकत से वंचित हो गए। दोस्तों, प्रोग्राम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें। खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज की बात।
आज की बात में आपका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत में किसान आंदोलन पर मीडिया। भारत में किसान आंदोलन जारी है और सहमति के लिए अब तक की जाने वाली सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। कोशिश जारी है, मगर इस बीच भारत के मीडिया की भूमिका पर किसानों ने बहुत आपत्ति प्रकट की है, लेकिन उस पर भी रोहित सरदाना जैसे पत्रकारों के अपने विचार हैं।
मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, लेकिन अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे।
तो भाई, गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोग को जाननी है तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा भी बताता हूँ। आप सब लोग भाई जहां भी मोहल्ले में कॉलेज में पढ़ते हो गए, आसपास में गली मोहल्ले में रहते हो गए, आप देखते हो गए ना, कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, हर समय चौराहे पे बैठे रहते हैं और हमेशा उनकी नजर जो है वहां आसपास मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों पे होती है। उन गुंडों को जो लड़की पसंद आ जाती है उसको तो वो कह देते हैं ये सबकी भाभी है जी, इसका सब सम्मान करो। और वो अगर मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है तो वो उसको आवारा बदचलन घोषित कर देते हैं और वहां दीवारों पर जा जाके उसके खिलाफ लिख देते हैं। तो इस समय की स्थिति यही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे वो दीवारों पे जा जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया। उनका कहना हमारी गोद में बैठ जाओ नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन हो। तो अब भाई क्या कहा जा सकता है, ऐसों से तो यार आप ही लोग निपट सकते हो, आप निपट लो। पहले भी आप निपट ही रहे हो, निपटा रहे हो उनको काफी समय से, आगे भी निपटाते रहना, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब इनके हिसाब से बोले तो ये वाहवाही करने लगते हैं, जहां इनको सूट नहीं करे वहां तुरंत गोदी मीडिया चिल्लाने लगते हैं। तो बेसिकली इनका दर्द वही है जो चौराहे पे बैठे हुए उन मंचलों और गुंडों का होता है। ये है गोदी मीडिया की सच्चाई।
कुछ पत्रकारों के रवैये से किसान बेहद गुस्से में है।
ये जो भाड़ मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, पतल चाट कुत्ते पत्रकार हैं, ये जो गोटी चखते हैं, सरकार की दलाली करते हैं, जूते जीप से चाटने वाले, ये दूसरे को नसीहत देंगे? देश की जनता को इतना बड़ा अपमान करेगा, उसका चैनल देखेगा? आप बंद कमरे में ऑडियंस किराए का होता है, आपके टीवी डिबेट में बैठने वाले लोग किराए के होते हैं और आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। जिस कंपनियों का सामान हम खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं ना भैया, तो हमारा ही टैक्स के पैसों से चैनल चलता है, तो उसकी विकृत मानसिकता देख लीजिए। अरे कुत्ता भी जिस मालिक का रोटी खाता है वो मालिक का गुनगाता है, उसके लिए भौंकता है जब कोई अजनबी आदमी आता है, तो ये मीडिया वाला तो कुत्तों से रहेगा, जैसी संगति रहेगा वैसा ही ना प्रभाव पड़ेगा। आप डॉक्टर के साथ रहिएगा दवाई का नाम जानिएगा, साधु के साथ रहिएगा तो दो चार को मंत्र जानिएगा, वैज्ञानिक के साथ रहिएगा तो कुछ रिसर्च कीजिएगा। ये लोग रहता किसके साथ है? पनौती के साथ। आखिर देखिए मीडिया का खौफ देश के सभी पार्टी के नेताओं में है, कोई भी पार्टी का नुमाइंदा देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के आंदोलन में नहीं शरीक हो रहा है। ये खौफ और डर सिर्फ देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का है जो कुत्ते की तरह ढाबे के बाहर खड़े होते हैं कि मालिक खाएगा और बोटी फेंकेगा, हम हड्डी का कुतुर कुतुर के खाएंगे।
आंदोलन कर रहे इस किसान की बात भी सुने।
मोदी मीडिया गोदी मीडिया बनकर इन लोग ये किसानों को ये बताते रहे कि किसान बह गए हैं, किसान अनपढ़ हैं, वो बहकर बातों में आ गए हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, वो देश का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको गोदी मीडिया और मोदी मीडिया का नाम दिया है। कोई भी भाई बहन अगर टीवी को देखता है तो ज़्यादातर वो हिंदी में न्यूज़ चैनल देखता है, हिंदी में न्यूज़ चैनल देखेगा तो कोई कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता पे असर पड़ेगा। जब उनको पता लग गया, केंद्र को अपनी एजेंसियों से पता लग गया, उनके पास रिपोर्ट्स आ गई, ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले चुका है और जनमानस का रूप ले चुका है और ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए बहुत खतरे की बात है कि अगर इतना बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ खड़ा हो गया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बाद भी तो वो क्या करेंगे। तो उन्होंने ये जो गोदी मीडिया पहले से चला आ रहा था उसको फिर अपने हाथों में लिया और इस आंदोलन को खालिस्तानी और आतंकवादियों का आंदोलन बताना शुरू कर दिया।
वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी से आलोक जोशी की बातचीत का एक हिस्सा।
इस वक्त दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको कि ये हो गया कि जिसको आप जिस मीडिया की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो मेनस्ट्रीम मीडिया आप कह रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा हो गया और वो काफी दिखाई पड़ता है, प्रभावी है। यहां तक कि सरकार के पक्षधर एक पत्रकार को इतना संबल और सहारा दिया गया कि वो अपने आप में मीडिया मालिक बन बैठे और उन्होंने वो जिस अंदाज में चलाते हैं अपना चैनल वो देखने लायक है। मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कभी कि कोई ऐसा आदमी टेलीविजन पर खड़े होकर अपने को राष्ट्रीय चैनल कहेगा और इस अंदाज में व्यवहार करेगा और उसको लोग देखेंगे भी। एक सवाल आपने जो पूछा अंबानी अडानी का नाम, तो अंबानी अडानी का नाम, जियो के प्रोडक्ट का बहिष्कार, आप कह रहे हैं कि चैनलों ने सब कुछ बताया लेकिन इसको गोल कर दिया, तो इसकी दो वजहें हैं। एक वजह साफ है जो आप कह रहे हैं कि आप मीडिया बड़े कॉरपोरेट से डरता है, तो मीडिया बड़े कॉरपोरेट से डरता से ज्यादा है, बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का इन्हीं कॉरपोरेट्स के हाथ में है, इनकी हिस्सेदारी है उस मीडिया के मालिकाने में, तो एक हिस्सा तो वो हो गया। दूसरा, बड़े घरानों से विज्ञापन मिलते हैं, बहुत विज्ञापन मिलते हैं और मीडिया विज्ञापनों के भरोसे चलता है और इस वक्त खास तौर पर कोरोना काल में आप जानते हैं कि मीडिया की हालत खराब है। भारत के सबसे बड़े जो मीडिया हाउस हैं, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी का अभी किसी ने निकाला है, क्योंकि वो प्राइवेट लिस्टेड कंपनी नहीं है, वो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, फिर भी निकला है कि पिछले उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है, 450 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इसका अर्थ है कि मीडिया इस समय कष्ट में है और इस वक्त जो मालिकान हैं वो ये खतरा नहीं मोल लेना चाहते हैं कि कोई भी आदमी कितना भी विज्ञापन देता हो वो किसी भी वजह से नाराज हो जाए। ये दो वजह हुई। तीसरी और महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि आजकल किसी भी विषय पर कब आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, कौन सा प्लेयर आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दे, ये पता नहीं चलता। इसलिए इस मामले में भी मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं। और तीसरी चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है मंशा। अगर हमारी मंशा ही है खास तौर पर, इसमें जरूरी नहीं कि मालिक कहे, इसमें अनेक पत्रकार ऐसे हैं जो स्वयं आत्मा से उस आंदोलन के खिलाफ खड़े हैं, जो इस बात को मानते हैं कि यह जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, इस देश में जो सरकार है उसे ईश्वर ने यहां भेजा है और ये लोग बैठे हुए हैं और ये जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं और इनके विरोध में आवाज उठाने वाले सब देशद्रोही हैं।
किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका रखने वाली रितु सिंह ने भी इस बातचीत में अपने विचार प्रकट किए।
मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मैं भी गोदी मीडिया को नहीं देखती हूं, मैं भी इस मीडिया को नहीं देखती। आप मुझे बताएं, जो मीडिया हमारी बात ही नहीं रखता, जो हमारी बात ही नहीं सुनता, बात ही नहीं रखता, जो जब तक हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जब तक वो खबर वहाँ से निकलता है सच, वो इनके तक पहुँचते पहुँचते झूठ बन जाता है। तो ऐसे ही मीडिया को मतलब शर्म आनी चाहिए कि एक्चुअली ये सरकार से, आप कह रहे हैं ना कि सरकार से डरते हैं या किससे डरते हैं, जब हाफ ऑफ द चैनल्स यू नो आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी एंड उससे अधिकतर चैनल जो हैं वो खरीदे हुए हैं अंबानी और अडानी के, तो आप मुझे बताएं वो जनता की न्यूज़ कैसे दिखाएंगे? तो आप मुझे बताएं कि वो झूठ का प्रचार करेंगे कि वो सच दिखाएंगे ज़मीन पे आकर? जो एसी कमरों में बैठे बहुत आराम से यू नो उस एसी कमरे में बैठे झूठ बुनते जाते हैं, और इटसेल्फ यू नीड टू रियलाइज आर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मीडिया के नेता हैं, वो मीडिया से मोदी जी बने हैं, तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि जो वो कहेंगे तो वो वही दिखाएंगे ना। कैसे नाराज कर देंगे वो अंबानी को, कैसे नाराज कर देंगे अडानी को, और उनके खरीदे हुए चैनल पे आप मुझे बताएं वो कैसे दिखा देंगे जनता का दुख, जनता का दर्द? वो तो यही दिखाएंगे ना कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है देश में, जो कर रहे हैं मोदी जी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी से ज्यादा देश का भला किसी ने किया ही नहीं 6 सालों में। आप देखिए 2 करोड़ रोजगार देने की जिसने बात करी थी, मिला आपको रोजगार? क्या मीडिया ने दिखाया आपको? ये मीडिया ने कवरेज करी वहां जाकर? मीडिया 2014 से पहले एक सैंक्टिटी होती थी, एक मीडिया का काम होता था, सच्ची पत्रकारिता होती थी कि मीडिया सरकार से सवाल पूछती थी कि क्यों लोग इतने परेशान हैं आपसे, क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज यही मीडिया, गोदी मीडिया अगर कभी दिख जाती है आपको वहां पहले, तो आएगी कवर करेगी और गलत न्यूज जाके दिखाएगी। और अगर यही मीडिया आएगी कवर करने के लिए तो यही मीडिया जाकर वहां पर दिखाएगी कि लोग गलत कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को आके कि नहीं सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है, आप क्यों यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये मीडिया रह चुका है, क्योंकि इनको ये दिखाना है, इनको झूठ का प्रचार करना है, झूठ को फैलाना है, क्योंकि मेरा झूठ जिसे मोदी जी का सबसे मजबूत, दैट्स व्हाट दिस मीडिया इज डूइंग। अगर आज सच में ये मीडिया मतलब कॉर्पोरेट से नहीं डरती है, मोदी जी से नहीं डरती है, तो डेयर यू शो कि कितना अच्छा डिसीजन लिया गया बुधवार को कि हम अंबानी अडानी को बॉयकॉट करेंगे, हम जियो को बॉयकॉट करेंगे, हमके मॉल्स को बॉयकॉट करेंगे, क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने ये चीज?
गोदी मीडिया शब्द के लिए मशहूर वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार के विचार भी सुन लें।
लगाम वो खत्म हो गया है, वो एंटी डेमोक्रेटिक हो गया है, वो एंटी देश के जो लोकतांत्रिक संस्कृति है उसके खिलाफ काम कर रहा है। ये मैं लोगों को बता रहा हूँ, उसमें असहमति की आवाज, विपक्ष की आवाज को कमजोर किया जाता है और सरकार से सवाल नहीं किया जाता। जो सरकार में है वो जिम्मेदार होता है कि और कौन होता है? फिर हम और आप थोड़ी जिम्मेदार होते हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस चीजों पे आंख कान खोल के नजर रखें, है ना। और हम कितना भी जिम्मेदार हो जाएं, कोई भी ऐसी बात हो, आप में 100 कमी होगी, मेरे में भी कमी होगी, तो इन कमियों को लेकर क्या मकसद है कि हम और आप लड़े? अगर कोई ये खेल खेल रहा है तो आपको भी ये समझना चाहिए और हमको भी समझना चाहिए। बोल चुका हूँ, भारतीय मीडिया है ही नहीं इस देश में तो मैं क्या देखूंगा। भारतीय हैं, उन्हीं को मैं देख रहा हूँ कि उन्हीं से कोई उम्मीद है।
बहरहाल फिलहाल आंदोलन जारी है, सरकार प्रस्ताव दे रही है, लेकिन किसानों के लिए कोई भी प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। अलबत्ता किसानों के लिए सरकारी योजना के एक हिस्से के बारे में दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कुछ बातें बताई हैं जो चिंताजनक है।
अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है, तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी, तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पर कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने जमीर की सुनते हो। आज दिल्ली की सरहद पे पंजाब का किसान है और देश की सरहद पे उसी किसान का बेटा पंजाब का जवान है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के एक किसान सरदार कुलवंत सिंह जी दिल्ली की सरहद पे बैठे हुए थे और खबर आई कि उनका 22 साल का जवान बेटा सुखबीर सिंह बॉर्डर पे देश के लिए शहीद हो गया। इस सब के बीच जब कुछ लोग आए दिन किसानों को आतंकवादी बुलाते हैं, देशद्रोही कहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि बॉर्डर पर उन जवानों पर क्या बीतती होगी जिनके किसान मां बाप को आतंकवादी कहा जा रहा है। आज हम सबको तय करना होगा कि हम देश के किसानों के साथ हैं या उन्हें आतंकवादी कहने वालों के साथ हैं।
किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन, वह हर देश के नागरिकों का हक होता है और बहरहाल किसान और भारत सरकार किसी न किसी सहमत पर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन इस बीच मीडिया की भूमिका को शायद ही किसान भुला सकें। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
شتو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد اپنی اچھاؤں کے خلاف جہاد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی سوچ کی اور سے ساودھان رہو کہ وہ بات چیت کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے، اپنی بات چیت کی اور سے ساودھان رہو کہ وہ عادت کا روپ اختیار کرتی ہے، اپنی عادت کی اور سے ساودھان رہو کہ وہ چرتر کا روپ اختیار کرتی ہے، اپنے چرتر کی اور سے ساودھان رہو کہ وہ ویکتتو کا آدھار بنتی ہے، اور اپنے ویکتتو کی اور سے ساودھان رہو کہ وہی تمہارا بھوشیہ ہے۔ انت میں مکھیہ سماچاروں کا سارانش ایک بار پھر پیش ہے۔ ایرانی راشٹرپتی نے کہا کہ امریکہ ایرانی راشٹر کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ چین کا کہنا ہے کہ ایران پرمانو سمجھوتے پر پھر سے بات چیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ترکی نے کہا کہ کٹھن سمے میں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آرتھک وکاس کے بعد اب انیہ کھیتر میں بھارت بنگلہ دیش سے پچھڑ گیا ہے۔ آشا اس سبھا کے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ پروگرام کے بارے میں آپ اپنے وچار ہمارے اس ای میل آئی ڈی پہ بھیج سکتے ہیں، hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ فیس بک پر ہمارے پیج کا ایڈریس ہے facebook.com/irib hindi۔ اسی کے ساتھ یہ سبھا سماپت ہوتی۔ محمد علی قمی اور ساتھیوں کو انومتی دیجیے۔ شبھراتری، خدا حافظ۔Thank you.